इप्सिता चुपचाप अभिमन्यु की बात सुन रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, आप नहीं जानती, लेकिन अभी इस एंगेजमेंट को हम सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सभी लोगों को ये बात पता चले कि आप हमारी मंगेतर हैं, क्योंकि हम आप पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आने देना चाहते। आपको हमारी ये बातें झूठी लग रही होंगी, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभिमन्यु की बातें सुनकर इप्सिता चौंक कर उसकी तरफ देखी। अभिमन्यु ने आगे बोलना जारी रखा, आपने पता नहीं इस बात को नोटिस किया या नहीं, हमारी एंगेजमेंट में कोई भी घर परिवार के बाहर का आदमी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने अपने किसी दोस्त या फिर स्टाफ को भी इनवाइट नहीं किया था। ये एंगेजमेंट सिर्फ हम दो परिवारों के बीच में ही हुई है, और माँ भी अभी यही चाहती हैं कि ये सब हमारी शादी तक सीक्रेट ही रहे। इप्सिता ने ये बात सुनकर मन ही मन कहा, क्या मिस्टर अभिमन्यु सही कह रहे हैं? वैसे ये बात तो हमने भी नोटिस की थी कि कल हमारी एंगेजमेंट में घर वालों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये सच है। इप्सिता ये सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और उसे इप्सिता के चेहरे के सामने करते हुए कहा, प्लीज़ इस एंगेजमेंट को मत तोड़िए और हमारा सॉरी एक्सेप्ट करते हुए इस एंगेजमेंट रिंग को फिर से पहन लीजिए। इप्सिता के दिमाग में अभिमन्यु की बात और थोड़ी देर पहले उसकी माँ द्वारा बताई गई बातें घूम रही थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसे अभिमन्यु के चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। उसने अभिमन्यु के हाथ में दिख रही अपनी अंगूठी की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात। इतना बोलकर इप्सिता ने अंगूठी उठाने लगी। तभी अभिमन्यु ने अंगूठी अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मैं आए? इप्सिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें दीजिए, हम खुद पहन लेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इसका मतलब अभी तक आपने हमारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया? इप्सिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने आपको माफ कर दिया है। अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने हमें माफ कर दिया तो लीजिए, हमें अपना हाथ दीजिए। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कान को देखकर इप्सिता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में दे दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में रखा, अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो जैसे वो अब इप्सिता को खुद से दूर नहीं जाने देगा। जिस तरह से उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा, इप्सिता महसूस कर पा रही थी कि वो अपनी बात को लेकर कितना गिल्ट फील कर रहा था। उसने जल्दी से इप्सिता के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। जैसे ही अभिमन्यु ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, इप्सिता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अभिमन्यु ने अभी भी इप्सिता का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी सुहासिनी जी वहां पर 3-4 नौकरों के साथ आईं और उन सब ने अभिमन्यु के सामने नाश्ते की प्लेट लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी जी को वहां आते देखकर ही इप्सिता ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। अभिमन्यु ने सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जी, इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप मुझे बेटा बोलती हैं और दूसरी तरफ ये सारी खातिरदारी क्यों? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आप तो इस घर के होने वाले जमाई हैं, आपकी खातिर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इप्सिता सुहासिनी को देखकर उठकर खड़ी हो गई। तभी सुहासिनी ने उसे वापस अभिमन्यु के बगल में बैठाते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप इप्सिता? बैठिए, कुंवर साहब से बात करिए, वो आपसे ही तो बात करने आए हैं, और वैसे भी हमें एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, हम थोड़ी देर में आते हैं। आई होप यू डोंट माइंड बेटा। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफकोर्स आंटी, आप आराम से जाइए, नो प्रॉब्लम। सुहासिनी जी वहां से जाते समय मुस्कुराकर इप्सिता की तरफ देखा और उसे वहीं अभिमन्यु के बगल में बैठा दिया। सुहासिनी जी के जाते ही अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे राजकुमारी इप्सिता, हम आपसे एक और बात पूछना चाहते थे। आप जब दोपहर में हमसे मिलने ऑफिस आई थी, तो आपने हमें थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से कहा था कि आप हमें थैंक यू बोलने आई थी और हमें लंच पर ले जाने के लिए आई थी, तो क्या हम पूछ सकते हैं उसका क्या रीजन था? आखिर आप हमें थैंक यू क्यों बोलना चाहती थी? इप्सिता ने अपने हाथ में पहनी हुई उस अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा, कल एंगेजमेंट के टाइम जब हमारी ड्रेस का हुक खुला था, तो आपने हमारी हेल्प की, और उस समय हम इतने ज्यादा नर्वस हो गए थे कि हमने जल्दबाजी में आपको थैंक यू नहीं बोला, इसीलिए हम आज आपके ऑफिस आए थे। हमने सोचा था कि हम आपको सरप्राइज दे देंगे और साथ ही में थैंक यू बोलकर लंच पर चलेंगे, शायद तब हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा और समझ सकें, बट शायद हमने गलती कर दी थी, हमें आपके ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अभिमन्यु में इप्सिता की पूरी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो मतलब हमने आपका लंच का प्लान ही फ्लॉप कर दिया, उसके लिए सॉरी। चलिए, आपका ये लंच हमारे सिर पर, जब आप फ्री होंगी तब हम आपको लंच पर जरूर ले जाएंगे। इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी अभिमन्यु ने अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए कहा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी राजकुमारी इप्सिता, आपने हमें थप्पड़ बहुत जोर से मारा था, मतलब हमें आपसे बचकर रहना होगा। अभिमन्यु ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक करते हुए कहा। इप्सिता ने अभिमन्यु के गाल की तरफ देखकर शर्मिंदगी से कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, हम उस टाइम गुस्से में थे क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभी कल हमारी एंगेजमेंट हुई और आज आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, हम समझ सकते हैं और मैंने वो क्यों बोला वो भी मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए चलिए अब हम चलते हैं। वैसे भी शायद हमने आपकी ब्यूटी स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया, शायद आप सो रही थी। इप्सिता ने अभिमन्यु की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, इप्सिता भी उठकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वो पीछे मुड़कर बोला, इप्सिता, अगर कभी आपको हमसे मिलना हो या फिर हमें ऐसा कोई भी सरप्राइज देना हो तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या? अभिमन्यु ने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, ये लीजिए हमारा फोन और अपना नंबर दीजिए हमें। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर देख रही थी और तभी अभिमन्यु ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, अभी भी आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है क्या, या फिर हमें आपकी नंबर के लिए आपकी मम्मी से परमिशन लेनी होगी? अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु के हाथ से उसका मोबाइल फोन लिया और उसने अपना नंबर डायल कर दिया। अभिमन्यु ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और जैसे ही उसे इप्सिता के फोन पर लगी हुई कॉलर ट्यून सुनाई दी, अभिमन्यु ने कॉल काटते हुए कहा, सेव कर लीजिएगा हमारा नंबर और अगर कभी भी आपको हमसे मिलना हो तो हमें एक मैसेज कर दीजिएगा, या कोई भी बात करनी हो आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकती हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुराया और इप्सिता भी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका चेहरा इतनी देर से मुस्कुराते हुए अब तक कितना लाल हो गया है। इतनी देर से उनके बीच चल रही बात खत्म करते हुए अभिमन्यु ने कहा, अच्छा हम अब चलते हैं। इप्सिता ने बिना कुछ बोले बस हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से पीछे मुड़कर इप्सिता की तरफ देखा तो पाया कि इप्सिता की नजरें भी उस पर ही टिकी हुई थी। तसल्ली करने के बाद फिर वो भी बाहर निकल गया। क्रमशः